طبعا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لصارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो अभी जो आयात तिलावत की गई सूरह यूसुफ की आयात नंबर 70 से लेकर 76 मतलब से 76 तक, और यह हम मारुफुल कुरान की जिल्द नंबर 5 से सफा नंबर 115 के ऊपर पढ़ रहे हैं सूरह यूसुफ की इन आयात की तफसीर। आज हम इनके मारुफ मसाइल पढ़ना शुरू करेंगे। पिछली क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा इन आयात का और खुलासा तफसीर पढ़ के मुकम्मल कर लिया था। वाकया यूसुफ अलैहिस्सलाम का चल रहा है कि वो अब अजीज मिस्र बन गए थे और उनके हाथ में सारे के सारे खजाने आ चुके थे और कहत भी जो है वो शुरू हो चुका था। तो जो लोकल्स थे उनको तो बांट दिया गया था, उसके बाद जो बाहर वाले लोग थे जहाँ जहाँ कहत पड़ रहा था वहाँ के लोग भी आकर के इनसे गल्ला लेके जाने लगे थे। फिर इनके अपने भाई आ गए, उनमें बिन्यामीन नहीं थे, तो इन्होंने शर्त लगाई कि अगली दफा जब तुम आना तो अपने उस भाई को भी लेकर के आना जिसको तुम इस दफा छोड़ के आ गए थे। तो वो अपने भाई को ले आए नेक्स्ट टाइम, और इस दफा उन्होंने भाई का भी हिस्से का गल्ला दिया। लेकिन उसके बाद क्या किया वो हम पढ़ रहे हैं इन आयात के अंदर। तर्जुमा तो अब नहीं होता मारिफ और मसाइल के अंदर, बस सीधा सीधा मारिफ और मसाइल ही बयान किए जाते हैं। बहरहाल अब हर चीज़ को रिपीट नहीं की जा सकती, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि आयात मस्कूरा में इसका बयान है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हकीकी भाई बिन्यामीन को अपने पास रोक लेने के लिए ये हीला और तदबीर इख्तियार की कि जब सब भाइयों को कायदे के मुवाफिक गल्ला दिया गया तो हर भाई का गल्ला एक मुस्तकिल ऊंट पर अलाहिदा अलाहिदा नाम बनाम पार किया गया। ठीक है, तो जो दूसरी दफा ये लोग आए थे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दफा भी इनका इकराम वगैरह तो जैसे पहले किया था वैसे किया, और फिर जब इनके जाने का वक्त आया तो हर एक उनके ऊपर अब उसके बाद जो है ना एक हीला किया उनका। ठीक है, हीला क्या चीज होती है? हीला कोई ऐसी तदबीर करने को कहा जाता है कि जिसके जरिए से जो है ना वो कोई ऐसा काम जो कि सीधी तरीके से नहीं किया जा सकता हो उसको जो है ना थोड़ा सा उल्टे तरीके से करने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है, तो ये एक बहुत तफसीली बाब है, डिटेल है इसके अंदर कि हीला करना जो है ना ये कैसे जायज है, कब जायज है और कब जायज नहीं है। ठीक है, तो उसमें फिर उलमा ने जाहिर है इसके ऊपर काफी सारी तफसील लिखी है, तो उन सब में जाए बगैर जो है वो सिर्फ इतना सा बहुत ही मुख्तसर सा इसका फिलहाल मसला सुन लीजिए कि हीला जो है ना वो उस वक्त जायज होता है जब इसके जरिए से कोई जायज काम करना मकसूद। ठीक है, जो कि सीधे तरीके से नहीं किया जा सकता हो, यानी क्या कहते हैं थ्रू प्रॉपर चैनल वो काम नहीं किया जा सकता हो, लेकिन है वो काम जायज। लेकिन हालात ऐसे हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, वो काम नहीं किया जा सकता। तो अब उसके लिए कोई हीला करना जो है वो जायज है, लेकिन अगर काम जो है वो नाजायज हो तो उसके लिए फिर हीला करना जो है वो जायज नहीं है कि हीला करके जो है ना वो काम निकाल दिया जाए। तो उसकी मिसालें जो है वो क्या कहते हैं उलमा ने फिर लिखी भी हैं, जैसे कि जो नाजायज हीला है उसकी एक बड़ी मशहूर मिसाल ये होती है कि जकात देना, ठीक है। तो जकात जो है ना वो किस वक्त किसी शख्स के ऊपर फर्ज हो जाती है जब उसके पास जो है ना वो निसाब के बकदर माल जो है वो एक साल तक रहा है, ठीक है। अब दरमियान में एक्चुअली वो अगर कम हो गया हो ना तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, यानी ये कि एक साल पहले उसके पास निसाब के बकदर माल था और फिर जब एक साल गुजर गया अब उसकी जो जकात देने का वक्त आया है उसका, चाहे वो जो भी उसने अपना जकात का हिसाब लगाया हुआ है पहली रजब को, मिसाल के तौर पर किसी ने जो है वो रजब को वो साहिब माल साहिब निसाब हुआ था, तो उसने जो है ना वो पहली रजब को काउंट करना शुरू किया एक साल। अब अगले साल जब पहली रजब आएगी तो वो ये देखेगा कि क्या अभी भी उसके पास निसाब से ज्यादा माल मौजूद है या नहीं है। अगर निसाब से कम माल है उसके पास तो वो जकात नहीं देगा, नहीं निकालेगा। लेकिन अगर निसाब से ज्यादा माल है तो उसको जकात निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक साल पहले भी उसके पास निसाब से ज्यादा माल था और अब एक साल गुजरने के बाद भी उसके पास निसाब से ज्यादा माल है, ठीक है। इसमें एक कंफ्यूजन लोगों को ये लगती है कि अगर ड्यूरिंग द ईयर साल के दौरान उसके पास हिसाब से कम माल हो गया हो ना तो अब जो है ना वो समझते हैं कि वो रिकाउंटिंग करने शुरू करनी है, अब जो है ना वो ये साल जो है ना ये अब जो आप काउंट कर रहे थे वो खत्म हो गया, अब दोबारा जब निसाब के बकदर माल होगा तो अब वहां से साल काउंट करना शुरू करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। पहली रजब को अगर आपके पास निसाब से ज्यादा माल हो गया था बस यहां से आपने काउंटिंग शुरू कर दी इस साल की, अब जो आप नेक्स्ट टाइम देखेंगे ना अपने माल को कि वो निसाब से ज्यादा है कि निसाब से कम है वो एक साल गुजरने के बाद देखेंगे, ठीक है ना। तो उस वक्त अगर माल जो है वो निसाब से ज्यादा है तो आप जकात देंगे, अगर निसाब से कम है तो आप जकात नहीं देंगे, ठीक है ना। तो अब कोई शख्स जो है ना वो जकात से बचना चाहता है, क्या चाहता है कि मैं नहीं जकात दूं, तो उसको वो क्या करे, वो एक हीला करे कि वो पहली रजब आने से थोड़े दिन पहले जो है ना वो अपना सारा का सारा माल जो है वो अपनी बीवी को इस शर्त पे हिबा कर दे कि ये सारा माल जो है ना वो तुम अपनी मिल्कियत में ले लो, ठीक है। और फिर जब पहली रजब गुजर जाएगी ना तो वो तुम मुझे वापस कर देना, ठीक है ना। तो अब जब पहली रजब आएगी और इसके एसेट्स को काउंट किया जाएगा तो ये इसके एसेट्स जो है वो निसाब से कम निकलेंगे, क्योंकि इसने तो अपना माल अपनी बीवी को दे दिया, ठीक है ना। और बीवी का तो जो है वो अब काउंटिंग जो है वो उस वक्त शुरू होगी कि भाई उसका माल जब उसके पास शौहर से माल आया अब उसका साल काउंट होना शुरू होगा और अगले साल देखा जाएगा। लेकिन इसके पास तो पहली रजब को माल निसाब से कम हो गया ना तो अब इसके ऊपर जकात नहीं वाजिब होगी, ये इसने हीला किया जकात से बचने के लिए, ये नाजायज, ठीक है ना। ऐसा हीला करना जो है वो नाजायज है। जबकि दूसरे कुछ और सिचुएशन भी उलमा ने एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है कि जिसके अंदर हीला करना जायज है, ठीक है। बहरहाल, तो व्हाट इफ समवन आस्क्स फॉर मनी एंड यू डोंट वांट टू गिव बिकॉज़ वन इज डाउटफुल ऑफ रिटर्न, सो द पर्सन सेज आई डोंट हैव मनी, विल इट बी हीला? नहीं, ये हीला तो हीला का ये कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि कोई कहे कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना। तो उसको शक ये है कि अगर इसने किसी को कर्जा दे दिया तो वो कर्जा जो है ना वो वापस नहीं लौटाएगा, ठीक है। तो अब उसके लिए अगर ये कह दे कि नहीं मेरे पास मनी नहीं है तो ये हीला नहीं कहलाएगा, ये झूठ कहलाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि हीला, ये हीला है, हलवे वाली हास है, बड़ी हास है, ठीक है। ये तो चश्मी हास नहीं होता ना, शोशे वाली हास होता है, ठीक है, बड़ी हास होता है, ठीक है। तो हीला इन शॉर्ट ये है कि जायज मामला के लिए जायज है और नाजायज मामला के लिए नाजायज है। बहरहाल, इसमें बहुत सारी तफसील की जा सकती है लेकिन अभी हम इसमें आगे पढ़ते हैं। तो फरमाते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हीला और तदबीर इख्तियार के लिए कि जब सब भाइयों को कायदे के मुआफिक गल्ला दिया गया तो हर भाई का गल्ला एक मुस्तकिल ऊंट पर अलहदा अलहदा नाम बनाम रखा गया, ठीक है। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना ये उसने कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो ये हीला नहीं होगा, ये तो सरासर झूठ होगा क्योंकि उसके पास पैसे हैं, ठीक है ना। हाँ अलबत्ता अगर वो इस किस्म की हरकत करे कि अपने सारे पैसे जो है ना वो दूसरी जेब में रख ले, और जिस जेब में कोई पैसे नहीं है उस जेब के अंदर हाथ डाल करके कहे कि जी मेरे तो कोई पैसे नहीं, अब मेरी जेब तो खाली है, जेबें खाली नहीं मेरी जेब खाली है, ठीक है ना, जिस जेब के अंदर अब कुछ भी नहीं है क्योंकि उसने जेब जो है वो सारी की सारी उठा के दूसरी जेब के अंदर डाल दिया है, तो इसको जो है वो हीला कह सकते हैं, ठीक है। इसको तौरिया का भी थोड़ा सा एक उसके अंदर शायबा आता है, खैर ये मैं इतनी तफसील में नहीं जानना चाहता इसके अंदर भी, तो इसमें फिर आप उलमाए कराम से ही कर लीजिएगा अगर कोई सिचुएशन ऐसी पड़ जाए आपके ऊपर। तो खैर ज़कात वाला हीला जो है ये बड़ा आसानी से जो है वो समझाया जाता है, समझ में भी आसानी से आ जाता है कि भाई आप तो है ना मालिक, अब आप अल्लाह ताला को धोखा दे करके आपको क्या मिलेगा, लोगों ने कोई थोड़ी आपसे वैसे भी ज़कात देनी है, ज़कात तो अल्लाह ताला की तरफ से किया हुआ एक फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला को पता है कि आपने अपनी बेगम साहिबा को जो है ना वो सिर्फ ज़कात से बचने के लिए प्रॉपर्टी दे दी है, और अब जो है ना वो आप वो प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे अपनी बेगम से, डर के मारे वो कहेगी अगर नहीं दूंगी तो वो तलाक दे देंगे, या नहीं दूंगी तो मुझे सारी जिंदगी ताना देते रहेंगे, नहीं दूंगी तो मेरे माँ बाप को जो है वो तंग करते रहेंगे, तो बेहतर यह है कि मैं इनको वापस ही कर दूँ, ठीक है ना। तो वो इस वजह से वो आपको वापस कर देगी, तो आप फिर से जो है वो निसाब के मालिक बन जाएंगे, लेकिन ज़कात से जो है वो आपने अपने आप को बचा लिया, लेकिन अपने आप को धोखा दिया, बता नहीं दे सकते। बहरहाल तो इन्होंने हीला और तदबीर इख्तियार की कि जब सब भाइयों को कायदे के मुआफ़िक गल्ला दिया गया तो हर भाई का गल्ला एक मुस्तकिल ऊंट पर अलहदा अलहदा नाम बनाम रखा बार किया गया, यानी लोड किया गया। बिन्यामीन के लिए जो गल्ला ऊंट पर लादा गया उसमें एक बर्तन छुपा दिया गया, उस बर्तन को कुरान करीम ने एक जगह लफ्ज सिकाया और दूसरी जगह सुवाअल मलिकी के अल्फाज से ताबीर किया है। आयत नंबर 70 के अंदर जाल सिकाया इस्तेमाल किया था, और आयत नंबर 72 के अंदर नफ्तदु सुवाअल मलिकी के लफ्ज से ताबीर किया। सिकाया के मानी पानी पीने का बर्तन, जैसे साकी पानी पिलाने वालों को कहते हैं उसी तरह सिकाया पानी पीने का बर्तन, और सुवा जो है वो भी इसी तरह के बर्तन को कहते हैं जिसको मलिक की तरफ मंसूब करने से, सुवाअल मलिकी था ना तो मलिक की तरफ मंसूब किया कि भाई ये बादशाह का प्याला था, तो मंसूब करने से इतनी बात और मालूम हुई कि ये बर्तन कोई खास कीमत और हैसियत रखता था क्योंकि बादशाह का प्याला था। बाज रिवायात में है कि जबरजद का बना हुआ था, कोई कीमती पत्थर जबरजद होता है उसका बना हुआ था, बाज ने सोने का और बाज ने चांदी का बताया है, यानी भाई जो रिवायात हैं बनी इसराइली रिवायात उनमें किसी में सोने का लिखा हुआ किसी में चांदी का लिखा हुआ, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता जिसका भी था, बहरहाल कीमती था बादशाह का था तो बादशाह का तो कीमती होगा। बहरहाल ये बर्तन जो बिन्यामीन के सामान में छुपा दिया गया था खास कीमती बर्तन होने के अलावा मलिके मिस्र से कोई इख्तिसास भी रखता था, ठीक है, यानी एक तो उसकी उसकी अपनी कोई उसकी मटेरियल बड़ा कोई कीमती था, लेकिन निस्बत से चीज जो है ना वो और भी ज्यादा कीमती हो जाती है, ठीक है, कि वो किसकी है। मिसाल के तौर पर सोने का प्याला तो भाई किसी बुढ़िया के घर में भी हो सकता है, कहीं ना कहीं से उसको मिल गया सोने का प्याला, लेकिन बुढ़िया का सोने का प्याला बुढ़िया से निस्बत होगी तो उसकी कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन बादशाह का सोने का प्याला उसमें और बुढ़िया के सोने के प्याले में जमीन आसमान का फर्क होगा, ठीक है, तो निस्बत से जो है ना वो कीमत बढ़ जाती है। ये हमारे मशायख बड़े इसके ऊपर फिर बात बताते हैं समझाते हैं उसको, निस्बत अपनी अच्छी बनाओ, ठीक है। हुआ ये कि वो खुद उसको इस्तेमाल करते थे, यानी बादशाह खुद उसको इस्तेमाल करता था, या ये कि मलिक ने बअम्र खुद उस बर्तन को गल्ला नापने का पैमाना बना दिया था, उसने ये खास कर लिया जैसे पहले ही बात हो चुकी है कि भाई सबको जो है ना वो इक्वल क्वांटिटी गल्ले की जाए, तो उसने एक तो स्टैंडर्ड बना लिया था उसी से जो है वो सबको दिया करता था, जाहिर उसके लिए इसकी बड़ी अहमियत थी बादशाह की। और यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज इन चार्ज, बादशाह तो वो नहीं थे लेकिन इस अमल के इंचार्ज वही थे। ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون, यानी कुछ देर के बाद एक मुनादी करने वाले ने पुकारा कि ए काफले वालों तुम चोर हो। यहां पर लफ्ज सुम्मा से मालूम होता है कि ये मुनादी फौरन ही नहीं की गई बल्कि कुछ मोहलत दी गई यहां तक कि काफला रवाना हो गया, ठीक है। तो बड़ी तदबीर के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ ना स्ट्रेटजी के साथ उन्होंने ये काम किया कि पहले वो कुछ कुछ निकल जाएं आगे चले जाएं और फिर जो है ना वो हम ये शोर मचाएंगे कि प्याला चोरी हो गया, अगर फौरन ही शोर मचा दें तो ये तो गया कि बच्चों का खेल हो गया कि भाई कोई चीज छुपा दी और उसके बाद फौरन ही बोलना शुरू कर दिया कि कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, तो अगले बंदे को भी पता चल जाता है कि कुछ ड्रामा कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद सुम्मा का जो लफ्ज है ना, इससे ताखीर का पता चलता है अरबी जुबान के अंदर। ताखीर के साथ जब काम होता है तो उसके लिए सुम्मा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये मुनादी की गई ताकि किसी को जालसाजी का शुबो ना हो जाए। बहरहाल इस मुनादी करने वाले ने बरादरान यूसुफ के काफिले को चोर करार दे दिया, मुनादी करने वाले ने। फिर उसके बाद फरमाते हैं, कालू अकबलू अलैहिम मादा तफ़क़दून, यानी बरादरान यूसुफ मुनादी करने वालों की तरफ मुतवज्जो का कहने लगे कि तुम हमें चोर बना रहे हो, ये तो कहो कि तुम्हारी क्या चीज गुम हो गई है, ऐसे ही तुमने हमें चोर चोर कहना शुरू कर दिया। तो कालू नफ़क़िदु सुवा अल मलिकी वलिमन जाअ बिही हिमलु बईरिन व अना बिही सईर। तो मुनादी करने वालों ने कहा कि बादशाह का जो सुवा है यानी बर्तन गुम हो गया है, और जो शख्स उसको कहीं से बरामद करेगा उसको एक ऊंट भर गल्ला इनाम में मिलेगा और मैं उसका जिम्मेदार। ठीक है, तो ये रिवॉर्ड का जो ऐलान था वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बता करके इस शख्स को मुनादी करने वालों को भेजा था। यहाँ एक सवाल सवाल तो ये पैदा होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने पास रोकने का ये हीला भी क्यों किया, क्यों किया उन्होंने सब कुछ रोकने के लिए, जबकि उनको मालूम था कि वालिद माजिद पर खुद उनकी मुफारकत का सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। लेकिन ना उनको इतना तो अंदाजा था अगरचे के जब निकले थे तो बहुत छोटे बच्चे थे कि बहुत शदीद मोहब्बत करते थे, इसी मोहब्बत की वजह से तो बाकी जो भाई थे वो हसद में मुब्तला हो गए थे। तो ऑलरेडी इनके मुफारकत की वजह से उनके वालिद साहब के लिए इतनी दुश्वारी हुई हुई थी, अब दूसरे भाई को रोक कर उनको दूसरा सदमा देना कैसे गवारा कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो ये एक सवाल पैदा होता है। फिर दूसरा सवाल इससे ज्यादा अहम ये है कि बेगुनाह भाइयों पर चोरी का इल्जाम लगाना और उसके लिए ये जालसाजी कि उनके सामान में खुफिया तौर से कोई चीज रख दी और फिर ऐलानिया उनकी रुसवाई जाहिर हो, ये सब काम नाजायज है। ठीक है, अगरचे कि ये भाई दूसरे मामले के अंदर तो गुनाहगार थे जिससे उन्होंने अभी तक तौबा नहीं करी, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने किया था उस तो अभी तक तौबा नहीं करी थी, लेकिन पुराने गुनाह यानी एक दूसरे अमल का जो गुनाह था उसको आप किसी और वक्त जो है ना वो जिस्मानी कर सकते। जैसे गुनाहगार इंसान है तो अब चूंकि वो गुनाहगार है, अब जो है ना जो गुनाह उसने नहीं भी किए हैं ना वो भी उसके सर पे थोप दो, जैसे कि हमारे यहाँ आम रिवाज है ये, है ना। एक बंदे को जब हमने बुरा बना लिया तो अब जितनी बुराइयां हमें नजर आती है ना वो उसके सर पे थोप देते हैं, हालांकि हमें कोई पता नहीं होता कि उसने ये वाला गलत काम किया, वो वाला गलत काम किया कि नहीं किया। ठीक है, तो ये चीज जायज नहीं है भाई, जो उसने गलत काम किया उसको उसी का खाली जिम्मेदार करार दिया जा सकता है, प्रोवेन। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि इनोसेंट अंटिल प्रोवेन गिल्टी। ठीक है, उस मामले के अंदर अगर वो इनोसेंट है तो उसको प्रूफ करो, अगर वो गिल्टी है तब जो है उसको आप गिल्टी बोल सकते हैं, वरना नहीं बोल सकते। तो ये एक बड़ा अहम उसूल है जिसको कि हमें भी याद रखना चाहिए। ठीक है, गुमान की बुनियाद पर इल्जाम जो है वो नहीं लगा देना चाहिए। और फिर ये कि जालसाजी के जरिए से उनके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, और तीसरी बात ये कि उनकी ऐलानिया तौर पर रुसवाई कर रहे हैं कि उनको जो है वो चोर करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे काम नाजायज हैं शरीयत के अंदर, यानी उनकी शरीयत में भी ये जायज नहीं था याकूब अलैहिस्सलाम की, और हमारी नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी ये जायज नहीं है। तो ये जो सवाल है ना इनके ऊपर फिर तफसील बयान कर रहे हैं कि बाद मुफस्सरीन जैसे कुर्तुबी, अल्लामा कुर्तुबी वगैरह ने बयान किया है कि जब बिन्यामीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और वो मुतमईन हो गए तो भाई से ये दरख्वास्त की कि अब आप मुझे भाइयों के साथ वापस ना भेजिए, मुझे अपने पास रखिए। ठीक है, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं कि गालिबन ये जो भाई थे ना वो बिन्यामीन के साथ फिर बहुत बुरा सलूक करते थे, क्योंकि वही सौतेलापन वाला जो मामला था यहाँ पे अब यानी लेकर रहा था। बुन्यामीन अगरचे के वैसे नहीं थे जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, लेकिन फिर भी सौतेले होने में तो वो मुश्तरक थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ ना। तो उन्होंने कहा जी मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे आप अपने पास ही रख लीजिए। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अव्वल यही उजुर किया कि अगर तुम यहाँ रुक गए तो वालिद को शदीद सदमा होगा, दूसरे तुम्हें अपने पास रोकने की उसके सिवा कोई सूरत नहीं कि मैं तुम पर चोरी का इल्जाम लगाऊं और उस इल्जाम में गिरफ्तार करके अपने पास रख। बुन्यामीन उन भाइयों की मुआशरत से यानी तौर जो उनके साथ जो उनका रवैया था, तो तो उससे कुछ इतने तंग दिल हो चुके थे कि उन इन सब बातों के लिए तैयार हो गए, कि चोरी का जान लेने के लिए भी तैयार हो गए और वाले साहब से दूर रहने के लिए भी तैयार हो गए। और तो ये अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है, ठीक है, कि इसकी ये वजह थी। अब अल्लामा कुर्तुबी के पास ये खबर कैसे पहुंची, हो सकता है कि वो उन तक कोई इसराइली रवायत पहुंची हो, या ये कि उन्होंने यानी गुमान किया कि भाई ऐसा भी मामला हो सकता है, क्योंकि इसके गुमान ऐसे कर लेने से कोई शरीयत के अहकाम तो वैसे भी नहीं निकलते, ठीक है, तो उन्होंने गुमान किया भाई ऐसे ऐसे होता है। ईदर वे वी डोंट नो कि अल्लामा कुर्तुबी ने ये बात जो है ना किस दलील की बुनियाद पर लिखी है, लेकिन फरमाते हैं कि ये वाकया सही भी हो तो वालिद की दिल आजारी और सब भाइयों की रुसवाई और उनको चोर कहना सिर्फ बुनियामीन के राजी हो जाने से तो जायज नहीं हो सकता। बुनियामीन ने कह दिया कि भाई मैं रहना चाहता हूँ, अब ये उसके लिए कोई हीला बना करके सबको रुसवा कर देना और जो है वो नाजायज किसी के ऊपर झूठ का इल्जाम लगा देना, तो ये तो जायज नहीं हो सकता ना भाई बुनियामीन के खाली राजी हो जाने की वजह से, ठीक है। हाँ, बुनियामीन के रजा से बुनियामीन को पीछे रोका तो जा सकता है, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ये नहीं चाहते थे कि जोर जबरदस्ती से रोका जाए। बड़े भाई जो है वो अब्बा हुजूर से वादे करके आए हैं और वो फिर आगे से अड़ जाएंगे कि नहीं ये हो ही नहीं सकता। एक जो है ना बड़ी यानी बहस मुबाहसे की सूरत पैदा हो जाएगी, लड़ाई झगड़े की सूरत पैदा हो जाएगी, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है ना वो अपने इस पोजीशन जो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोजीशन थी उसमें रहते हुए ये सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब आप किसी ऐसी पोजीशन पर होते हैं ना तो आप वो बहुत सारी चीजों का ख्याल करना पड़ता है, ठीक है ना। अब आप आम लोगों की तरीके से जो ना वो झगड़ा लड़ाई जिद और अड़ जाना और अपना ये इस तरह से आप नहीं कर सकते। यू हैव टू प्ले इट वेरी यानी सोबरली, ठीक है, वरना ये कि फिर रुसवाई होती है और फिर जो है एक फसाद होता है, और बड़े की तरफ से जब फसाद होता है तो फिर वो फसाद जो है ना वो नीचे वालों पर भी मुंतबित होता है, ट्रांसफर होता है, और फिर ऐसा ऐसा करके फसाद वाला माहौल पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ना जो ऊपर वाले होते हैं, जैसे कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम इस वक्त ऊपर वाले थे यानी हुकूमत के अंदर, तो उनको जो है ना फिर सियासत से काम लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये है असल सियासत। सियासत का मतलब ये नहीं है हमारे यहाँ जैसे कि तो सारी करप्शन को जो है वो सियासत कह दिया जाता है, सारे झूठ को जो है वो सियासत कह दिया जाता है, हर गंदी चीज को जो है वो सियासत कह दिया जाता है, लेकिन वो हमारे यहाँ की एक टर्म बन गई है सियासत। अदरवाइज सियासत का जो लफ्ज है ये हदीस मुबारका के अंदर इस्तेमाल हुआ है, और मफहूम उस हदीस का ये है कि बनी इसराइल के जो उलमा जो जो अंबिया होते थे वो सियासत किया करते थे, वो सियासत किया करते थे, ठीक है ना। अब बनी इसराइल के जो अंबिया कराम होते थे वो पाकिस्तानी सियासत वाली सियासत नहीं किया करते थे, बल्कि वो चूंकि उनको निजाम चलाना होता था और अल्लाह ताला ने उनमें से बहुत सौ को जो है ना वो पॉलिटिकल अथॉरिटी भी दी थी। एक तो होती है रिलीजियस अथॉरिटी, बस आप जो है वो रूहानी पेशवा हैं, आप जो है वो अल्लाह ताला के अहकाम बता रहे हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है ना वो रूहानी अथॉरिटी थे, वो इंजील के अहकाम बताते थे, तौरात के अहकाम जो है वो लोगों को करके बताते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम के पास कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं आई थी, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं आई थी। वो बाद में आएगी जब वो दोबारा दुनिया में वापस आएंगे, उस वक्त आएगी उनके पास, लेकिन पहले नहीं आई थी। तो वो बादशाह नहीं कहलाएंगे, सियासी हुक्मरान नहीं कहलाएंगे, लेकिन यूशा अलैहिस्सलाम, सलमान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, राइट, इवन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन लोगों को अल्लाह ताला ने पोलिटिकल अथॉरिटी भी दी थी, ठीक है। तो इसको जो है ना फिर चलाने के लिए आपको सियासत करनी पड़ती है, ताकि आपके जो नीचे वाले लोग हैं उनमें कोई एक तो केओस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है ना, और खामखा का फसाद ना हो आपके नीचे जो आपके जो सल्तनत है या आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसके अंदर लड़ाई झगड़ा फसाद ना हो, ठीक है। और तो बेसिकली आपको इस तरह से लेके चलना होता है, उसके लिए आपको सियासत करनी होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि ताकि आप जो है ना फिर मैक्सिमाइज कर सकें उन रिसोर्सेस को जो कि आपके मुल्क के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, उसके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए लाजमी है कि मुल्क के अंदर फसाद ना हो, ठीक है। अगर फसाद होता है मुल्क के अंदर तो फिर मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मिनरल्स हों, चाहे वो वाटर रिसोर्सेज हों, चाहे वो यानी लैंड लैंड रिसोर्सेज हो, खेत खलियान, राइट, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वो फिर मुल्क के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो सियासतदान का फिर ये बड़ा ही मुश्किल और अहम काम होता है कि वो फिर फसाद को अवॉइड करें और रिसोर्स भी जो है ना वो मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करें। ठीक है, तो उसके वजह से जो है ना वो उसको ऐसे मामलात करने पड़ते हैं जो कि एक आम आदमी को अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग के ऊपर रख करके समझ में नहीं आ रहे होते, ये क्यों कर रहे हैं इस तरह का काम। ठीक है, लेकिन बड़ों को जो है वो समझ में आ रहे होते हैं, छोटों को समझ में नहीं आ रहे होते। बहरहाल, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, तो उसके ऊपर फिर हजरत ने जो एक्सप्लेनेशन लिखी है वो फरमाते हैं कि वालिद की दिल आजारी और सब भाइयों की रुसवाई है, ये एक आम एक स्टैंडर्ड है कि भाई ये किसी की दिल आजारी सबसे बड़ा गुनाह है। हमारे हजरत फरमाते हैं ना कि सबसे बड़ी बीमारी दिल की बीमारी होती है, और सबसे क्या है वो, सबसे दिल आजारी होती है, सबसे बड़ा गुनाह जो है वो दिल आजारी होती है, किसी का दिल तोड़ देना। क्या वो शेर भी पढ़ते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे लेकिन किसी का दिल ना ढाना, है ना, क्योंकि दिल के अंदर खुदा रहता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, हम सबके लिए ये चीज बड़ी अहम है कि भाई किसी की दिल आजारी ना करें। तो ये किसकी दिल आजारी कर रहे हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम? ये अपने वालिद मोहतरम की दिल आजारी कर रहे हैं, बुन्यामीन को भी पीछे रोक करके और बगैर बताए। ठीक है, और सब भाइयों की रुसवाई, है ना, एक मुसलमान की इज्जत और अजमत जो है वो कितनी ज्यादा होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काबतुल्लाह से भी ज्यादा इज्जत जो है ना, अजमत जो है वो एक मुसलमान की इज्जत में। और ये लोग भी मुसलमान ही थे क्योंकि ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले थे, अपना याकूब अलैहि सलाम के, तो भी मुसलमान थे। उनकी रुसवाई और उनको चोर कहना सिर्फ बुन्यामीन के राजी हो जाने से तो जायज नहीं हो सकता। और बाज़ हजरात की ये तौजीह कि मुनादी का उनको चोर कहना यूसुफ अलैहि सलाम के इल्म इजाजत से नहीं था, ठीक है ना, यानी उसने अपने तौर पर ही चोर 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 कहना शुरू कर दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कोई भी नहीं कहा था चोर कहने के लिए। तो ये एक बेदलील दावा और सूरत वाकया के लिहाज से एक बेजोड़ बात है, यानी दिस डज नॉट मेक एनी सेंस कि वो अपने तौर पर ना कुछ कहना शुरू कर दे, ये तो जायज ही, ये तो मुमकिन ही नहीं है, वरना उसको जो है ना वो बड़ी शदीद किस्म की सजा मिल सकती थी कि उसने अपने तौर से कैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों को चोर कह दिया जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इजाजत नहीं दी थी इसकी। ये एक बेदलील दावा और सूरत वाकये के लिहाज से एक बेजोड़ सी बात है। इसी तरह ये तावील करना कि उन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से चुराया और फरोख्त किया था इसलिए उनको चोर कहा गया, ये भी एक तावील है, यानी ये भी बड़ी है ना दूर की लेकर के आए हैं कि भाई उन्होंने जो है वो 40 साल पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को चोरी किया था वालिद से, तो अब उस चोरी के वाकये को यहाँ पे चोरी के वाकये के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो ये एक ऐसी तावील है जिसका भी कोई इतना जोड़ नहीं होता है। यहाँ हजरत शफी रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं, इसीलिए इन सब सवालों का सही जवाब वही है जो कुर्तुबी और मजहरी वगैरह ने दिया है, तफसीर मजहरी में और तफसीर कुर्तुबी में दिया गया है कि इस वाकये में जो कुछ कहा गया है और जो कुछ किया गया है वो ना बुनियामीन की ख्वाहिश का नतीजा था, ना यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपनी तजवीज का नतीजा था, बल्कि ये सब काम बे अम्र इलाही उसी की हिकमत बालगा के मज़ाहिर, अल्लाह के डायरेक्ट हुक्म की वजह से सारे के सारे काम हुए। ठीक है ना, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीच में अपनी अकल या अपनी तदबीर या प्लानिंग नहीं थी, अपना हीला नहीं था, ना बुनियामीन के इसरार के ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह काम किया था, बल्कि अल्लाह का हुक्म था। ठीक है, माशाल्लाह, इन्होंने लिख दिया मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ कहना, एक बंदे दा दिल न ढावे रब दिला विच रहंदा, बोले शाह चला चला उसको तो बड़ा सारे सारे शेर मौजूद होते। तो अल्लाह ताला का हुक्म था ये, जिनमें हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के इब्तिला व इम्तिहान की तकमील हो रही थी। ठीक है, जिस इम्तिहान में अल्लाह ताला ने उनको यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में डाला था अभी वो इम्तिहान जारी था और अल्लाह ताला उस इम्तिहान को जो है ना अभी चला रहे थे मजीद आगे। इस जवाब की तरफ खुद कुरान मजीद की इस आयत में इशारा मौजूद है, कज़ालिका किदना लियूसुफ, ऐसे ही हमने यूसुफ के लिए तदबीर करी, यानी हमने इसी तरह तदबीर की यूसुफ के लिए अपने भाई को। ठीक है, अल्लाह ताला ने तदबीर करी, अल्लाह ताला ने अपनी तरफ इसको मंसूब भी कर दिया, यानी डायरेक्टली अल्लाह ताला ने अपनी तरफ मंसूब कर लिया। बीच में से जो जो करने वाले अल्लाह ताला इस्तेमाल करते हैं ना लोगों को, उनको गोया के अल्लाह ताला ने एलिमिनेट कर दिया, बीच में से निकाल दिया बीच में से। ये हमारी तदबीर थी। इस आयत में वाज़ह तौर पर इस हीला व तदबीर को हक ताला ने अपनी तरफ मंसूब किया है कि ये सब काम जबकि बअम्र इलाही हुए, बअम्र खुदावंदी हुए, तो उनको नाजायज कहने के कोई मानी नहीं रहते, उनको नाजायज कहने के कोई मानी नहीं रहते। ठीक है ना। अब ये एक इंतहाई बुनियादी तरीन बात है कि जिसके ऊपर कई दफा हम बात कर भी चुके हैं, तो पुराने लोगों के लिए शायद ये नई बात ना हो, लेकिन अगर कोई नया है तो उसके लिए कि भाई देखें ये जो जायज और नाजायज, क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है, ठीक है ना, ये कौन डिफाइन करता है? ये मैं डिफाइन करता हूँ कि क्या चीज जायज है क्या चीज नाजायज है, या आप डिफाइन करते हैं, आप तारीफ कहते हैं कि भाई ये चीज नाजायज है और फलानी चीज नाजायज है, या जो है वो कोई कोई और अथॉरिटी डिफाइन करती है, जैसे कि किसी मुल्क का जो है वो सदर वो डिफाइन करे ये चीज नाजायज है ये चीज नाजायज है, या कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन कोई सिविलाइजेशन डिफाइन डिफाइन करे, या चाइनीज सिविलाइजेशन डिफाइन करे कि ये चीज जायज है ये चीज नाजायज है, इस चीज की इजाजत है इस चीज की इजाजत नहीं है, ठीक है ना। नहीं, बल्कि ईमान वाले का यकीन किस बात पर है कि जिसने इंसान को बनाया, जिसने दुनिया को बनाया, जिसने कायनात को बनाया और जो इस कायनात को चला चला रहा है, इस तारीफ का असल हक जो है ना वो उसी के पास कि किसी चीज को जो है वो जायज करार दे दे किसी चीज को नाजायज करार दे दे। ये जो है ना कि ये चीज जायज है ये चीज नाजायज है, ये चीज जरूरी है ये चीज गैर जरूरी है, इस चीज को करने से जो है वो फलानी आपको फायदा मिलेगा, इस चीज को करने से आपको फलाना नुकसान मिलेगा, इसको जो है वो कानून कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कानून, लॉ। ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना उनके बारे में एक आप सुन 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 चुके हैं पहले भी कि एक लफ्ज किसी को कहते हैं ना दुनिया के, हम जैसे हमारे मुल्क में खास तौर पर कहा जाता है कि जी जो अवामुन नास है ना वो तो कानून के पाबंद हैं, लेकिन जो बड़े बड़े वडेरे हैं चौधरी हैं या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या फौज के, हमारे यहाँ फौज जो है वो ऑल इन ऑल समझी जाती है पाकिस्तानी, राइट, तो जो फौज के बड़े बड़े सरबरा होते हैं ना या लीडर ऑन होते हैं ना फौज के, वो जो है ना दे आर नॉट बाउंड बाय द लॉ, बल्कि दे आर अबव द लॉ, है ना, उसको कहते हैं अबू दी लॉ। वो बचपन में वो जंग अखबार के अंदर जो है ना वो आता था लिखा हुआ, एक फिल्म होती थी मुझे याद है वो, उसका एड आता था उसमें, उसको नाम था उसका अबव द लॉ, लेकिन उर्दू में लिखते थे अबू द लॉ, तो हम उसको पढ़ते थे ये अबू दी लॉ का क्या मतलब है, उर्दू में तो फिर अबू ही लिखा जाएगा ना अबव को, तो अल्लाह ताला जो है ना अबव द लॉ ये बेअदबी है अल्लाह ताला की, ठीक है ना, जैसे कि उन्होंने लिख दिया कि अल्लाह ताला इज नॉट अबव द लॉ, अल्लाह ताला इज द लॉ, यानी अल्लाह ताला इज द लॉ मेकर, ही डिफाइंस व्हाट इज राइट एंड ही डिफाइंस व्हाट इज, ठीक है ना, तो अल्लाह ताला को जो है ना वो किसी कानून के तहत फिट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि तो बिल्कुल भी यानी अल्लाह ताला को किस कानून के तहत किसकी कौन माई का लाल है, किसकी मजाल है कि अल्लाह ताला को किसी कानून के मातहत करे, ठीक है ना। अल्लाह ताला कानून से बालातर कहना ये बेअदबी का लफ्ज है, क्योंकि कानून से बालातर जो है ना ये अच्छे लोग नहीं होते ये बुरे लोग होते हैं, तो भाई अल्लाह ताला के लिए तो बड़ा अदब वाला लफ्ज इस्तेमाल करना होता है ना, तो इसी वजह से अल्लाह ताला के लिए प्रॉपर लफ्ज ये है कि भाई अल्लाह ताला ही कानून है, अल्लाह ताला ही कानून बनाने वाले हैं, और इंग्लिश में कह दिया जाता है ही इज द लॉ। जैसे कि वो एक साहब है बड़े मीडिया स्कॉलर बहुत सारे हैं आजकल, तो उन्होंने एक लतीफा सुनाया, बहुत सारे इस तरह के स्कॉलर जो लतीफे भी बहुत सुनाते हैं, उन्होंने कहा कि जी देर इज अ सिस्टर इन लॉ, देर इज अ मदर इन लॉ, देर इज अ फादर इन लॉ, देर इज अ सन इन लॉ, देर इज अ डॉटर इन लॉ, बट देर इज नो सच थिंग एज वाइफ इन लॉ, राइट, देर इज नो सच थिंग एज वाइफ इन लॉ बिकॉज वाइफ इज द लॉ, ठीक है ना, बेगम साहिबा तो खुद ही कानून होती है, तो वो तो मजाक की हद तक है ना, बेगम साहिबा तो कानून नहीं होती है, आप जो भी कहें उनको, लेकिन अल्लाह ताला का मामला ये है कि अल्लाह ताला वाकई कानून बनाने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये सब कुछ जो अल्लाह ताला ने किया ना, अब हम अगर अपनी छोटी सी अकल में इसको फिट करने की कोशिश करेंगे तो हम कहेंगे भाई ये नाजायज है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, या अगर हम जो है वो ब्रिटिश कॉमन लॉ या यूनाइटेड स्टेट्स लीगल सिस्टम, या जो है वो कोई और इंडिया का लीगल सिस्टम या किसी और मुल्क का लीगल सिस्टम, उसके तहत अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? ये तो नाजायज है, ये तो गलत है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना? लेकिन जो अल्लाह ताला को समझते हैं, अल्लाह ताला के की मार्फत रखते हैं, अल्लाह ताला के बारे में इवन बुनियादी नॉलेज भी रखते हैं, तो उनके लिए ये चीज बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी ये आसान और बिल्कुल भी जो है ना वो उनके लिए सादा सी बात है कि भाई अल्लाह सब कुछ बनाने वाले हैं, और अल्लाह ताला जो है वो क्या है, रमजानुल मुबारक की तफसीर की क्लासेस ली थी, तो अगर किसी को याद हो कि एक रमजानुल मुबारक में जो तफसीर चल रही थी इसी सूरह यूसुफ की, तो उसमें एक बड़ी जबरदस्त बात आ गई थी अपने हजरत से सुनी हुई बात, क्या थी किसी को याद है? अल्लाह ताला के बारे में, एनीवन क्या है भाई अल्लाह ताला का बोलना यार, वो बात तो कम से कम नहीं बोलना चाहिए ना जी। ठीक है माशाल्लाह हमको याद है, तो अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला तो हसीन है, ठीक है ना, और हसीन भी कैसे के हुस्न को बनाने वाले हैं, ठीक है, तो हसीनों को हर बात सचती है, हसीनों को हर बात सचती है, हसीनों से आप जो है ना वो आर्ग्यू नहीं कर सकते कि व्हाई डिड यू डू दिस एंड व्हाई डिड यू डिड नॉट डू दिस, ठीक है ना भाई, उनके तो माशाल्लाह कुल्ला यौमिन हुवा फी शान, हर दिन उसकी एक नई शान होती है, एक नई आन होती है, अल्लाह ताला का तो हुस्न ऐसा है, और दिन भी कोई हमारे स्टैंडर्ड वाला दिन नहीं, अल्लाह ताला का जो दिन होता है उसके हिसाब से हर दिन यानी हर आन नई, हर लहजा नई आन नई शान, ठीक है ना, तो ऐसे जो हसीन होते हैं तो उनसे जो है ना फिर जो उनके उनको दिल दिए हुए लोग होते हैं ना, उनको जो दिल दिए हुए लोग होते हैं वो ये नहीं पूछते कि आपने ये क्यों किया, आपको ऐसे तो नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि ये उन उनके आशिक होते हैं, है ना, ये उनके चाहने वाले होते हैं, इसी वजह से जो ईमान वाले होते हैं ना, मानने वाले, यानी नबी अलैहिस्सलाम को मानने वाले, ठीक है ना, और नबी अलैहिस्सलाम की मानने वाले, ठीक है ना, ये होते हैं ईमान वाले, ठीक है ना, अल्लाह ताला इनके बारे में फरमाते हैं वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बल लिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला के साथ शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं, ठीक है ना, तो जो अल्लाह ताला के साथ शदीद मोहब्बत करने वाले यानी ईमान वाले, हमारे जैसे नहीं बल्कि वो ईमान वाले जो कुरान मजीद फरमा रहा है अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करने वाले, ठीक है, तो वो जो है ना अल्लाह ताला को अपनी छोटी सी अकल या किसी दूसरे इंसान या किसी दूसरे निजाम की छोटी सी अकल के ऊपर नहीं तोल रहे होते, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत कर रहे होते हैं, है ना, वो अल्लाह ताला के हुस्न के असीर हुए हुए होते हैं, कैदी बने हुए होते हैं अल्लाह ताला के हुस्न के, राइट, अल्लाह ताला की जुल्फों के असीर हैं, अल्लाह ताला के हुस्न के, राइट, तो अब जो है ना ये लोग जो है ना ये क्यों किया, वो क्यों ना किया, और ऐसे क्यों नहीं किया, और वैसे क्यों कर दिया, लेकिन जो ऐसे नहीं होते यानी जो मानने वाले नहीं होते, जो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले नहीं होते, तो उनके सामने ये बातें आप रखें और फिर देखें उनका क्या जवाब होता है, ठीक है, तो फिर वो जो है ना वो अपनी अकल की बुनियाद पर अपने जोम में वो अपनी अकल के ऊपर अल्लाह ताला को तोल रहे होते हैं, और अल्लाह तो वो है जो अकल में ना आए, है ना, आपकी अकल की हैसियत क्या, मेरी अकल की हैसियत क्या, है ना, इतनी से तो चीज उसमें समझ में नहीं आती कि पता नहीं ये दुनिया का निजाम कैसे चल रहा है, चूटियों को खाना कैसे मिल रहा है और उसको कैसे खाना मिल रहा है और ये कैसे हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और अल्लाह ताला हमारी अकल में आ जाएगा कि अल्लाह के सारे जो जो काम है, अल्लाह ताला जो निजाम चला रहा है, इसकी सारी की सारी हिकमत हमारे अकल में आ जाएगी, तो इनकी अकल में तो ये बात नहीं आ सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता कि इनकी अकल में आ सकती, इस वजह से ऐसे लोग जो है ना वो किसी ना किसी दर्जे में एतराज, ठीक है ना, या तो वो कुछ नहीं सोचता तो वो अल्लाह ही पर एतराज कि क्यों किया ऐसे, ऐसे क्यों बंदे मार दिए, ऐसे क्यों बच्चे मार दिए, ऐसे क्यों जलजला आ गया, ऐसे क्यों तूफान आ गया, ऐसे क्यों सुनामी आ गया, ऐसे क्यों, राइट, और वैसे क्यों, तो या तो डायरेक्ट अल्लाह पे एतराज, या ये कि जिन्होंने अल्लाह के बारे में हमें बताया कि अल्लाह ऐसे करते हैं, अल्लाह वैसे करते हैं, उनके ऊपर एतराज कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, आपको क्या पता अल्लाह ताला के बारे में, और आपकी जो बातें हैं ना वो तो इनकंसिस्टेंट हैं अल्लाह के बारे में, कभी कुछ कहते हैं कि अल्लाह ताला हिकमत के साथ काम करते हैं, और दूसरी तरफ जो आपसे हिकमत पूछते हैं तो आप हमें हिकमत समझा ही नहीं पाते अल्लाह ताला की। तो अजीब गरीब किस्म के जो है ना, ये हर वक्त मखमसे में रहते हैं, ठीक है ना। उसकी वजह ये नहीं होती कि इंसान की अकल जो है ना, उसमें जब कोई मसला पूरी तरह से समझ में आ जाए तब वो उस बात के ऊपर यकीन कर लेता है, नहीं, इसकी ये वजह नहीं होती। बल्कि वजह ये होती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो नबी अलैहिस्सलाम और नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से जो हम तक नॉलेज उलमाए कराम और मशाइख उजाम के वास्ते से पहुंचा है, नबी अलैहिस्सलाम से जो इल्म अल्लाह के बारे में हम तक इस पूरी की पूरी चेन ऑफ नरेशन से पहुंचा है, और जो ये उलमा और मशाइख का जो एक सोहबती जो एक निजाम दुनिया के अंदर कायम है, ठीक है ना, नबी अलैहिस्सलाम ने सोहबत का एक निजाम कायम किया, ठीक है ना, जिसके अंदर लोग आकर के जुड़ते थे और वो उस निजाम का हिस्सा बनते थे। मदीना तैयबा की रियासत जिसको कहते हैं, है ना, वो सिर्फ मदीना तैयबा के अंदर तो नहीं थे ना, फिर वो एक्सपैंड हुई, पूरे सरजमीन अरब तक फैली, फिर वो फैलते फैलते जो है वो पूरे के पूरे मशरक और मगरब तक फैल गई। ये पूरा एक सोहबत का निजाम था, ठीक है ना। तो जब आप इस सोहबत के निजाम का हिस्सा बन जाते हैं ना, तब जो है ना वो आपकी अकल जो होती है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, आपके ऊपर उस सोहबत का असर होता है, मानने वालों की सोहबत का असर होता है ना। और आप भी जो है ना, फिर अल्लाह ताला के बारे में फिर एतराज नहीं कर रहे होते, बल्कि अल्लाह ताला से मोहब्बत कर रहे होते हैं। बेशक बहुत ज्यादा ना भी कर रहे हो अभी, लेकिन आपके अंदर अल्लाह ताला के लिए एक मोहब्बत होती है, क्योंकि आप मानने वालों का, मानने वालों के निजाम का हिस्सा है, ठीक है ना। तो दूसरों के कुलूब का आपके कुलूब के ऊपर एक असर हो रहा है, आपके कल्ब के अंदर भी अल्लाह ताला की मोहब्बत आ गई, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है ना, ये जो अकल है ना, ये एतराजी तौर पे चीजें नहीं उठा रही होती, ठीक है ना, एतराजी तौर पे जो है ना ये नुक्ते नहीं उठा रही होती कि अगर वैसे है तो ऐसा क्यों है और ऐसे है तो वैसा क्यों नहीं है। लेकिन जो इस निजाम से दूर रहता है, मानने वालों की सोहबत से दूर रहता है ना, और समझ रहा होता है कि मैं अपनी अकल से इंडिपेंडेंटली जो है ना वो चीजों को एनालाइज कर रहा हूं, राइट, एंड माय अकल इज एक्टिंग ऑन इट्स ओन इंडिपेंडेंटली, एंड आई विल क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, ऐसा शख्स जो होता है ना, वो पहली बात तो ये कि वो धोखे में मुबतला होता है कि वो इंडिपेंडेंटली ये काम कर रहा है। वो इंडिपेंडेंटली कर ही नहीं सकता, वो होता ही नहीं है इंडिपेंडेंट। क्यों? इसलिए कि भाई अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम ये है कि या तो आप पॉजिटिव फोर्सेस से यानी ईमान वालों के सोहबत से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, और अगर आप ईमान वालों के सोहबत से इन्फ्लुएंस नहीं हैं तो आप इनकार करने वालों के सोहबत से इन्फ्लुएंस्ड। देयर इज नो सच थिंग एज इंडिपेंडेंट। ये कई बार आप सुन चुके हैं, पिछली क्लास में भी शायद इसके ऊपर बात हुई थी, ठीक है। तो आप जो है ना असल में नेगेटिव फोर्सेस से यानी इनकार करने वालों की फोर्सेस से इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप इंडिपेंडेंटली अल्लाह ताला को एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आप अंडर इन्फ्लुएंस हैं, ठीक है। तो अब जब आप अंडर इन्फ्लुएंस है ना, तो इस वजह से अब आपको जो है ना वो अकली दलाइल की बुनियाद पर आपको कन्विंस नहीं किया जा सकता। कन्विंस तो आप उस वक्त होते जब आप इस निजाम का हिस्सा बनते, और इस निजाम के अंदर आप अल्लाह ताला की प्यार मोहब्बत वाली बातें सुन रहे होते, राइट, और बार बार ऐसे नुकात आपके सामने आ रहे होते अल्लाह ताला की अजमत के ऊपर और हमारी कम आएगी बल्कि बेमायगी के बारे में बार बार आपको रिमाइंडर्स मिल रहे होते ना, तो आपके जहन के अंदर अल्लाह के अफआल और हिकमतों के ऊपर एतराज उठ ही नहीं रहे होते ऐसे एतराज आपके अकल के अंदर, क्योंकि आप मोहब्बत करने वालों के जुलू के अंदर है, उनके सोहबत के अंदर है, ठीक है ना। तो ऐसे मामला आपके साथ होगा ही नहीं, पेश पेश ही नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उससे कट करके रहेंगे तो फिर आप शैतान की झोली के अंदर गिरे हुए रहेंगे। बेशक आप माने कभी भी नहीं, आप कभी भी नहीं मानेंगे कि मैं तो शैतान की झोली में गिरा हूं। कोई कौन मानेगा कि मैं शैतान के इशारों पर नाचता हूं? कौन मानता है इस बात को कि मेरा जो शेख है वो तो शैतान है? कभी कोई मान सकता है ये बात? कोई नहीं मानेगा इस बात को कि मेरा शेख तो शैतान है, मैं तो शैतान से सीख करके चलता हूँ, मैं तो शैतान की झोली के अंदर पड़ा हुआ। लेकिन उसके इस इनकार से हकीकत बदल नहीं जाती, हकीकत वही है जो नबी अलैहिस्सलाम ने बताई। है ना, और नबी अलैहिस्सलाम से सीख करके हमारे मशायख ने मजीद उसकी तफसीलात खोली है कि जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है, बस पीरियड डन डील, जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है। अब मसला यह है कि कुछ बच्चे भी सुन रहे होते हैं ना, वो जाकर के अपने रिश्तेदारों को बोलना शुरू करते हैं, अब अंकल आपका कोई शेख नहीं है तो इसका मतलब आपके शेख शैतान है। भाई ये किसी को बोलने की चीज नहीं है यार, अपने लिए है ये, तो बच्चे अगर सुन रहे हैं ना तो बच्चों को मना कर दें कि किसी मामू चाचू वगैरह को जाकर के बोल मत ये कि मामू आपका शेख जो है ना वो शैतान है और चाचू आपका शेख जो है वो शैतान है। ये दूसरों को बोलने वाली बात नहीं है, समझाने की खातिर जिसके अकल में बात आती है और वो समझाने के ऊपर कादिर है, इतनी अकल और समझ रखता है, इल्म रखता है, तो वो बेशक लोगों को समझा सकता है, लेकिन कहने की बात नहीं है। ठीक है, अपने लिए है कि हमारा वाकई कोई शेख है ऐसा कि नहीं है, तो हम जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है, हम समझ रहे हैं कि हम आजाद जिंदगी गुजार रहे हैं और हम खुद से चीजों को एनालाइज करते हैं और फिर उसके बाद अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बाद फिर उनको एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उसको फॉलो करते हैं। हम वी आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज, नथिंग एल्स। ठीक है, तो जो भी आजाद रहता है ना तो फिर वो इस किस्म के मखमसों का शिकार होता है, उसको हर चीज के अंदर उल्टी सीधी जो है ना वो खराफात और अजीब गरीब किस्म के नजरियात आ रहे होते हैं, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि फिर अल्लाह ताला इसके ऊपर उसको बड़ी सजा देते हैं और वो फिर एक्सप्लिसिटली भी जो है ना वो किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा बन जाता है जो कि ईमान की नफी करने वाला, ईमान वालों की नफी करने वाला ग्रोह, यानी वो फिर डिक्लेयर्ड काफिर या डिक्लेयर्ड जो है ना वो गुमराही का शिकार हो जाता है, जैसे कि आज के दौर के अंदर ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है और बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो जुड़ के रहना ये हमारे लिए यानी ये फर्ज है, ये फर्ज है, क्योंकि इसके बगैर ईमान की हिफाजत नहीं हो सकती, और ईमान की हिफाजत ये कोई नफली और मुस्तहब वाला मामला नहीं, ये फर्ज है। ईमान नहीं है तो और रह क्या गया हमारे पास, अमाल लेकर के जाएंगे अल्लाह के पास, राइट? अगर ईमान ना हुआ तो उन अमाल की जीरो भी कदर कीमत नहीं, मतलब जीरो कदर कीमत है हमारे अगर ईमान नहीं है। ठीक है जी, तो ये जो मामला है ये अल्लाह ताला, भाई अब जुड़े ना दरस कुरान के साथ, दरस कुरान के अंदर तो बार बार ही चीजें आ रही हैं, अल्लाह ताला जो है ना वो ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इज द लॉ मेकर, अल्लाह ताला वट एवर आप कहें, अल्लाह ताला को अबव द लॉ कहें, बाला तर कहें, अल्लाह ताला को लॉ कहें, भाई अल्लाह इज द वन हु विल डिसाइड। ठीक है ना, तो इसके ऊपर फिर हजरत ने मजीद लिखा, मिसाल भी दी इसके ऊपर, और मिसाल वही उसी के लिए एप्लीकेबल है जो कि कुरान मजीद को मानता है और उन बातों को समझता है, यानी सुनता रहता है ऐसी बातों को, उसके लिए ये मिसाल भी इफेक्टिव होगी, और जो नहीं मानता इस बात को, जो नहीं मानता वो उस मिसाल को भी नहीं मानेगा। ठीक है, जैसे कि इसकी मिसाल ऐसी होगी जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खजर अलैहिस्सलाम के वाक़े में कश्ती तोड़ देना, कश्ती तोड़ देना किसी की बगैर किसी वजह के, कहाँ से जायज हो गया, लड़के को कत्ल कर देना, हालांकि उस लड़के ने जो है वो तो बालिग भी नहीं हुआ था, राइट? और उसने किसी को कत्ल नहीं किया था, तो एक तरफ कुरान मजीद में है कि ला ला, ला तक्तुलुन नफ्सा इल्ला बिल हक, बगैर हक के जो है ना वो किसी नफ्स को कत्ल मत करो, और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं खजर अलैहिस्सलाम ने लड़के को कत्ल कर दिया हालांकि उसने कोई गुनाह नहीं किया। ठीक है, तो ये बजाहिर गुनाह थे, इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर नकीर भी की, क्योंकि वो तो सामने थे, उन्होंने कहा ये आपने कैसे कत्ल कर दिया, आपने कैसे कश्ती तोड़ दी, मगर खजर अलैहिस्सलाम ये सब काम बिइज्न खुदावंदी खास मसलहत के तहत कर रहे थे, इसलिए उनका कोई गुनाह नहीं था। ठीक है, قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين, यानी जब शाही मुनादी ने बरादरान यूसुफ पर चोरी का इल्जाम लगाया तो उन्होंने कहा कि अरकान दौलत भी खुद हमारे हालात से वाकिफ हैं कि हम कोई फसाद करने यहाँ नहीं आए, वरना हम चोर हैं। ठीक है जी, तो ये काफी सारी एक एक्सप्लेनेशन थी, हमारा काम है बस इसके ऊपर बात करते रहना, समझाते रहना कि भाई ये जो है ना ये दौर ये अलग इंडिपेंडेंट रहने का दौर नहीं है, ये अभी वो वक्त नहीं आया है कि जिसके अंदर आप हट हट करके अपनी बकरियों को लेकर के जो है ना पहाड़ के ऊपर चढ़ जाए। अगर वो आपके ख्याल में ये दौर आ गया है पहाड़ियों पे चढ़ जाने का बकरियों को लेकर के, तो भाई जाए ना, यहाँ क्या बैठे कर रहे हैं, जाए बकरियां बकरियां पहले तो खरीदें जा करके गनम मार्केट से जहाँ पे बकरियां मिलती हैं, और फिर उनको लेकर के पहाड़ों पर चढ़े, इधर क्या कर रहे हैं बैठ करके, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या जो है वो अपना सोशलाइजेशन कर रहे हैं और फलाना कर रहे हैं निपकाना कर रहे हैं। अगर वो दौर नहीं आया है और आपने इधर ही रहना है, तो भाई ये तो जुड़ के रहने वाला दौर, ये तो कहफ में रहने वाला दौर, ठीक है ना। अब अगर आप नहीं रहते तो भाई किसी दूसरे का आप नुकसान नहीं कर रहे, खालिस्तन अपना नुकसान कर रहे और किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तारा से दुआ है कि ना बात की समझ चमल तो आखिर बता फुल बाय 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 ब